लीला का रहस्य। यद्यपि अवतार का हेतु एक यह भी है कि धर्म की ग्लानि और अधर्म के अभ्युत्थान को भगवान स्वयं आविर्भूत होकर दूर करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यः। परंतु मुख्य कारण तो भगवान के लिए लीला का विस्तार ही है। स्वलीला कृते विस्तारात् भक्ते स्वनुजिद्धिक्षया अस्य जन्मादि लीला नाम प्राकट्ये हितु रुत्तमः। यह लीला दो प्रकार की बताई गई है, प्रकट और अप्रकट। मध्य काल के भक्त कवियों ने प्रकट लीला का ही गान किया है, परंतु अप्रकट नित्य लीला को वे भूले कभी नहीं। जग नायक जगदीश प्यारी जगत जननी जग रानी नित विहार गोपाल लाल संग वृंदावन रज धानी। हम जो बात अच्छी तरह याद रखने की है वह यह है कि भक्ति का भगवान के साथ जो भी संबंध क्यों न हो, निखिला नंद संदोह भगवान श्री कृष्ण ही उस प्रेम के आलंबन है। आलंबन जैसा कि सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, विषय रूप आलंबन और आश्रय रूप आलंबन। दुष्यंत को देखकर अगर शकुंतला के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है तो दुष्यंत विषय रूप आलंबन के रूप में ही देखते हैं। गोपियां यशोदा नंद गोपबाल उद्धव आदि सभी भक्त आश्रय रूप आलंबन है। इन सबकी एकमात्र अभिलाषा यही होती है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें बिना वैष्णव साहित्य को पढ़ेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। यह भाव नाना भाव से भक्त कवि की कविता में आएगा। इसी रूप में न देखने का परिणाम यह हुआ है कि सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े सहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। नहीं, वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण नहीं हैं, वे उससे भी बड़ी चीज हैं। संसार के साहित्य की बात मैं नहीं जानता क्योंकि वह बहुत बड़ा है और उसका एक अंश मात्र हमारा जाना हुआ है। परंतु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता, सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलग्य है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की, न भाषा की कोई, क्यों ऐसा है? क्या कारण है कि शताधिक पदों में बार बार दोहराई हुई बात इतनी मनोरम हो गई है? क्या कारण है कि उपमाओं, रूपकों और उत्प्रेक्षाओं की जमात हाथ जोड़कर इस बार बार दोहराई हुई लीला के पीछे दौड़ पड़ी है? इसका कारण यशोदा का निखिला नंद संदोह भगवान बाल कृष्ण के प्रति एकात्म आत्म समर्पण है। अपने आप को मिटाकर अपना सर्वस्व निछावर करके जो तन्मयता प्राप्त होती है वही श्री कृष्ण की इस बाल लीला को संसार का अद्वितीय काव्य बनाए हुए है। यशोदा को उपलक्ष्य करके वस्तुतः सूरदास का भक्त चित्त ही सत रस स्रोतों से उद्वेल हो उठा है। वही वह चित्त गोपियों गोपाल और सबसे बढ़कर राधिका के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए सूरदास की पुनरुक्तियां जरा भी नहीं खटकती और वाक्य चातुर्य इतना उत्तम कोटि का होकर भी व्यंगार्थ के सामने अत्यंत तिरस्कृत हो गया है। वर्णन कौशल वहाँ प्रधान नहीं है, वह भक्त के महान आत्मसमर्पण का एक अंग मात्र है। किंतु साधक भक्त लोग लीला के विरह रूप को जितनी आसानी से अनुभव करते हैं, इसलिए सूरदास की पुनरुक्तियां जरा भी खटकती नहीं है और वाक्य चातुर्य इतना उत्तम कोटि का है कि व्यंग्यार्थ के सामने अत्यंत तिरस्कृत हो गया है। वर्णन कौशल वहाँ प्रधान नहीं है, वह भक्त के महान आत्मसमर्पण का अंग मात्र है। किंतु साधक भक्त लोग लीला के विरह रूप को जितनी आसानी के से अनुभव करते हैं उतना मिलन रस को नहीं। जिस दिन साधक सिद्ध हो जाता है और भक्ति अर्थात चिन्मय रस के एकमात्र आकर निखिलानंद संदोह भगवान से मिलकर एकमेव हो जाता है, उस दिन कुछ कहने की बाकी नहीं रह जाता। इसी सिद्धावस्था को बताने के लिए कबीर दास ने कहा है, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नाही, एक रही दू जी गई, बैठा दरिया माही। साखी शब्द जब कही तब कुछ कहना, तब कुछ जाना नाही, बिछुरा था तब ही मिला, अब कछु कहना नाही। भगवान के साथ गोपियों या श्री राधा के मिलन के विषय में गान करता हुआ भक्त सतगुरु के बताए हुए लीला मार्ग को दोहराता है और आशा करता है कि उनके सत्संग से प्राप्त की हुई हृदय कर्ण की रसायन रूप कथा को सुनते सुनते श्रद्धा, प्रीति और भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में यह बात स्पष्ट शब्दों में कही गई है, सताम प्रसन्ना गमन में वीर संविदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तज्जो सड़ादाश्व पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। परंतु विरह की अवस्था में वह स्वयं को अपने आप को निशेष रूप में उड़ेल देता है। यही कारण है कि भक्त की विरह कथा अधिक सरस, अधिक भाव प्रवण और अधिक दावक होती है। यशोदा द्वारा कथित निम्नांकित पदों में सूरदास स्वयं फूट पड़े हैं, मेरे कान कमलदन लोचन, अब की बार बहुर फिरी, आबहु कहां लगे जिय सोचन, यह लालसा होती है जिय, मेरी बैठी देखत रह हो, गाय चरावत कान कुंवर को कबहु जान न दे हो। और यद्यपि मन समुझावत लोग सूल होत नव नीत देख, मेरे मोहन के मुह योग, प्रात काल उठी माखन रोटी को बिन मांगे दे है, अब उही मेरे कुंवर कान को छिन्न छिन्न अंकम ले है। यशोदा का यह रूप तभी समझा जा सकता है जब पूर्ववर्ती बाल लीलाओं को इसी प्रेम का एक रूप माना जाए। स्वभावोक्ति का चमत्कार देखने वाले यशोदा के इस और इस रूप में कोई एक रूपता नहीं खोज पाएंगे। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि राधिका के रूप में सूरदास ने भक्त हृदय का जो चित्र खींचा है वह इसी अपूर्व तन्मय प्रेम का आशय भेद से परिवर्तित रूपांतर मात्र है। सूरदास ने जिस प्रेम का चित्रण किया है वह अपना उपमान आप ही है। उसमें उस प्रेम की गंध भी नहीं है जो प्रिय को संयोगावस्था में उसकी विरह शंका से उत्कंठित और वियोगावस्था में मिलन लालसा से व्याकुल हुआ करता है। वह संयोग में 16 आना संयोग में और वियोग में 16 आना वियोग में है। राधा और कृष्ण के नाम पर प्रेम के काव्य अनेक लिखे गए हैं। रीति काव्य का प्रायः सारा का सारा इसी प्रेम लीला का विस्तार है। उनमें वियोगी के सभी रूपों, पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र या प्रवास का बाह्य रूप जैसा का तैसा मिल सकता है, पर प्रेम का वह वास्तविक चित्रण जिसमें बाह्य रूप गौण हो जाता है, जिसमें चतुरों के बताए हुए भेद उपभेद होकर भी धन्य होते हैं और न होकर भी धन्य होते हैं, दुर्लभ है। संस्कृत कवि ने दो प्रेमिका सखियों के रूप से इस रहस्य को समझाया है। एक के प्रिय ने उसके कपोल पर सुडौल मंजरी अंकित कर दी थी। वह अपने प्रेम का यह विज्ञापन गर्व के साथ दिखा रही थी। दूसरी ने कहा, ऐ सखी, तू प्रिय की अपने हाथों अंकित मंजरी को इस प्रकार दिखाती हुई गर्व कर रही है, यह उचित नहीं। दूसरी कोई भी इस प्रकार के सौभाग्य का पात्र बन सकती थी यदि हाथ की कपकपी बीच में विघ्न न पैदा कर देती। पहली का प्रेम केवल प्रेम का बाह्य प्रदर्शन है, मंजरी का अंकित होना केवल उस प्रेम का उथलापन ही दिखाता है। असली प्रेम तो वहाँ है जहाँ हाथ कप जाता है, मंजरी का रूप ही नहीं बन पाता। सो नाना भावों और विभावों के चित्रण मात्र से और राधा और कृष्ण का नाम लेने भर से ही कविता उस श्रेणी की नहीं हो जाती, जहाँ राधा और गोपियों के बहाने भक्त अपने आप को दलित द्राक्षा के समान निचोड़ कर अपने परमाराध्य के चरणों में निछावर कर देता है। यहाँ भावों और हावों के सूक्ष्म भेद भूल जाते हैं। महाप्रभु को किसी अलंकारिक रसाचार्य ने जब मिलन और विरह, संयोग और विप्रलंब की नाना अवस्थाओं और कोटियों का तत्व समझाया तो उन्होंने कातर भाव से विज्जका का बताया जाने वाला वह श्लोक पढ़ा जिसमें कहा गया है, ऐ सखी तू धन्य है जो प्रिय मिलन के समय की उसकी कही हुई स्तुतियां याद रखे हुए है। मैं तो अभागी हूँ, प्रिय ज्यों ही मुझे स्पर्श करता है क्यों ही कसम खाकर कहती हूँ जो कुछ भी याद रह जाए। वस्तुतः बाह्य रूप और परिस्थितियां अनडूबे मानस के विकल्प हैं। सूरदास उस विकल्प के आडंबर से बहुत ऊपर है। उन्होंने इस प्रेम निधि को पाया था जो नए रूपों और आकारों को जन्म दिया करता है। बाल स्वभाव का वर्णन हो या प्रेम लीला का, सर्वत्र वो एक गंभीर है। यह जो कांता भाव की रीति है वह इस देश के निर्गुण भाव के उपासक भक्तों में भी पाई जाती है। कबीरदास दादू आदि भक्तों में भी यह भाव है, परंतु वहाँ समासोक्ति पद्धति से काम लिया जाता है और लौकिक कांता विषय प्रीति व्यंजना का विषय होती है। कबीरदास प्रायः ऐसे पदों के अंत में सतगुरु या संतों का नाम सावधानी से ले लेते हैं जिससे आध्यात्मिक प्रीति निश्चित रूप से प्रस्तुतार्थ हो जाती है। इस विषय के रविंद्रनाथ के गानों में कवित्व इतना अधिक होता है कि वहाँ सहृदय के हृदय की चर्वित अनुभूति के अनुकूल लौकिक और अलौकिक दोनों ही भाव प्रस्तुत हैं और दोनों ही व्यंजना के विषय हो जाते हैं। जब वे कहते हैं, अरे ओ अभागिन तुझे कैसी नींद आ गई जो प्रियतम के पास आने पर भी जाग नहीं सकी, वह निस्तब्ध रात्रि में आया था हाथ में उसके वीणा की, तेरे स्वप्न में उसने गंभीर रागिणी बजा दी और तू सोती ही रही, हाय जाग के देखती दक्षिणी हवा को पागल बनाकर उसका सौरभ अंधकार में व्याप्त होकर प्रभावित हो रहा है, हाय क्यों मेरी रात व्यर्थ चली जाती है, उसे नजदीक पाकर भी नहीं पा सकती क्योंकि उसकी माला का स्पर्श मेरे वक्षस्थल को नहीं लगने पाता। तो प्रस्तुतार्थ लौकिक प्रेम भी हो सकता है और अलौकिक भी, किंतु सारा पदबंध सहृदय को एक अलौकिक रसानुभूति कराए बिना विश्रांत नहीं हो पाता। वैष्णव भक्तों अर्थात सगुण मार्गी का कहना का दूसरा रास्ता है, वे भगवान के साक्षात विग्रहवान रूप की लीला गाते हैं और गोपियों के बहाने अपना प्रीति निवेदन करते हैं। साधारण आदमी पूछ सकते हैं कि भक्त कांता भाव से ही परम भक्त शक्ति की उपासना क्यों करता है, भगवान को प्रिया के रूप में समझकर क्या उपासना नहीं हो सकती? हो सकती है। इस देश में इस प्रकार की उपासना पद्धति भी अनजानी नहीं है, पर भक्त जिस कारण से अपने को भगवान की कांता समझने में आनंद अनुभव करता है वह उपेक्षणीय नहीं है। आगम शास्त्रियों का विश्वास है कि भगवान ने लीला के लिए जब सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए तो अपने को उन्होंने द्विधा विभक्त किया, इसमें एक ओर तो नारायण हुए और दूसरी ओर उनकी शक्ति लक्ष्मी। शक्ति निषेध व्यापार रूपा होती है क्योंकि वह भगवान की उस इच्छा का रूप है जिससे जिसके द्वारा वे कुछ के अभाव को अनुभव करते हैं। स्त्री में इसी शक्ति का प्राधान्य है, इसलिए स्त्री निषेध व्यापार रूपा या अपने आप को समर्पण करके ही सार्थक होती है। भक्ति में इसी निषेधा व्यापार का आत्मसमर्पण भाव सेवक में स्वामी के लिए, माता पिता में संतान के लिए और मित्र में मित्र के लिए भी होता है। फिर भी कांत के लिए आत्मसमर्पण की भावना चरम सीमा पर पहुंचती है। यही कारण है कि भक्त कांता भाव के भजन को इतना श्रेष्ठ समझता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि लौकिक प्रीति होने पर प्रेम जड़ोन्मुख होता है और इसलिए कांता भाव में जड़ा शक्ति ही चरम रूप में विद्यमान होती है। लौकिक प्रीति का विषय होने पर यह प्रेम श्रृंगार रस का विषय होता है और सब प्रेमों के नीचे पड़ जाता है, परंतु जब यह चिन्मुख होता है अर्थात भगवत विषयक होता है, इसका नाम उज्जवल रस होता है। यही श्रेष्ठ रस है। जिन लोगों में आत्मसमर्पण की भावना का प्राधान्य नहीं है, वे इस रास्ते को नहीं अपनाते, परंतु भक्ति भगवान के प्रति अनन्य गामी एकात्म प्रेम का ही नाम है और उसमें ऊपर बताए हुए किसी न किसी प्रकार के आत्मसमर्पण का मार्ग ही स्वीकार करना पड़ता है। सूरदास में वात्सल्य, सख्य और मधुर भावनाओं का बड़ा ही उत्तम परिपाक हुआ है। हमने अपनी अन्य पुस्तकों में विस्तृत रूप से इन बातों की चर्चा की है। यहाँ हम अधिक कुछ न कहकर भक्ति कवियों की राधिका के उस प्रेम की चर्चा करना चाहते हैं, जो उनकी अपनी विशेषता है। इस प्रेम के पूर्ण को दिखाने का हम समय न पा सके, परंतु उस विरह रूप को कुछ अधिक विस्तार के साथ ही दिखाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे साधक भक्त अपनी कातर मनोवांछा बार बार प्रकट कर सकता है। इसलिए वह भक्त कवि को समझने में सबसे बड़ा सहायक है।